नमस्ते। कल हम लोगों ने एक पहली क्लास अंग्रेजी में और दूसरी मिक्सचर में, तो अभी हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ दो प्रकार के लोग मुड़ते हैं। मैं धार्मिक जीवन यानी रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि धर्म एक ऐसा अनूठा शब्द है जिसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है इंग्लिश में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की तरफ दो प्रकार के लोग मुख्य रूप से मुड़ते हैं। एक, जैसा कि बुद्ध देव ने बताया कि जीवन में दुख है और दुख से हमको, पीड़ा से मुक्ति चाहना, ये हर किसी के हृदय में तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और बड़ा विचित्र ये बात है कि इच्छाओं के कारण दुख है और दुख से मुक्त होने की इच्छा होती है। खैर, जो भी हो, इसको सूक्ष्म अहंकार कहा गया है। जो अंतिम अहंकार होता है वो मुक्ति का अहंकार होता है, इसको आध्यात्मिक उसमें। खैर, तो वो उस पीड़ा से, कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं और उन्होंने डॉक्टर का, वकील का, पुलिस का और पॉलिटिशियन का और प्रीस्ट का भी, पंडितों का भी दरवाज़ा खटखटा लिया है। किताबें पढ़ ली हैं, सारी सेल्फ हेल्प टेक्निक जान ली है, टेड टॉक्स सुन ली हैं, लेकिन पीड़ा वहीं की वहीं है। तो वो चाहते हैं कि पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले, कब तक ये रहेगा। तो अंत में वो घूम फिर के कहते हैं कि सुना है कि कुछ ऐसा है, वहाँ मन को बड़ी शांति मिलती है, और वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ जाते हैं। ये एक प्रकार के लोग हैं, शांति के लिए वो भगवान को ढूंढते हैं या आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ते हैं। आमतौर पे कोई मेडिटेशन की टेक्निक सीख लेते हैं, माइंडफुलनेस या माइंडलेसनेस, जैसे भी आप देखो, और अंत में उनको शांति मिलती है। वो शांति के लिए ढूंढ रहे थे। किंतु दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये शांति पे रुक जाते हैं और इस शांति का जो अल्टीमेट स्वरूप है वो मोक्ष है, निर्वाण है, निर्वाण की प्राप्ति है। इसको अगर आप स्ट्रेच कर लोगे अल्टीमेट तक, शांति इज नॉट इक्विवेलेंट टू निर्वाणा, पर शांति को अगर आप उसकी गहराई, ऊंचाई और उसके अल्टीमेट ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि शांति का स्रोत भी वही है जो शक्ति का स्रोत है। तो भगवान का शांति में स्वरूप, उसका स्पर्श मिलता है और सब कुछ अंदर में तृष्णा शांत हो जाती है। तृष्णा के शांत होते ही सब शांत हो जाता है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो शांति के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, उनका जीवन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब जितना जीवन चलता है, उनको किसी असफलता या विफलता का सामना नहीं करना पड़ा, जीवन से वो प्रसन्न है। लेकिन वो इतना समझ गए हैं कि ये जीवन में ये एक बहुत सीमित फ्रेम है और उनके अंदर एक अलग प्रकार की चाह जगने लगती है कि इसके आगे क्या है। वो उत्तर ढूंढ रहे हैं प्रश्नों के, वे प्रश्न जो उनको मन की भूमि पे उठते हैं लेकिन मन की भूमि पर जिनका समुचित समाधान नहीं है, वे उत्तर ढूंढ रहे हैं। और इसको अगर हम कहें कि जैसे पहले श्रेणी के मनुष्य शांति ढूंढते हैं, दूसरे श्रेणी के मनुष्य प्रगति ढूंढते हैं, वो प्रगति चाह रहे हैं। और चूंकि वो प्रगति चाह रहे हैं, उनका संपर्क भगवान के उस स्वरूप से होता है जो शांति में नहीं, शक्ति में है, शक्ति के संपर्क में आते हैं और वो धीरे 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 उस दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। नाना प्रकार की नई नई ऊर्जाएं, नई संभावनाएं, नई चेष्टाएं, नई प्रेरणाएं उनके अंदर उपजने लगती हैं और वो उस पर बढ़ते चले जाते हैं, उनको प्रगति मिलती है। जो जिस तरह की अभिप्सा से मुड़ता है उस तरह का उसको गिफ्ट मिलता है। तो इसका मूल क्या है, हम लोग अगर बुद्धिज्म को देखें तो कहते हैं मूल मनुष्य के जीवन का, वो कहते हैं दुख एक सत्य है और दुख के पीछे कारण क्या है इस सफरिंग का, वो डिजायर्स हैं, और कामनाओं के पीछे मूल क्या है, अहंकार है। अब अहंकार का मूल कहाँ है, वहां पे समस्या आ जाती है। और अहंकार एक ऐसे कांटे की तरह है जो हमारे जीवन की चादर में अटका रहता है। तो जब कांटा कोई अटक जाता है ना और आप उसको निकालना नहीं जानते, आप कुछ और नहीं कर सकते, आपका पूरा ध्यान कांटे पर लगा है। छोटी सी चीज है, जीवन उससे बहुत बड़ा है, लेकिन चादर को अगर आप फैलाना चाहेंगे तो ऐसा लगता है कि ये फट जाएगी। अब बार बार आप कांटे को ढूंढना निकालना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जीवन में कोई फांस या कांटा लगा हो, उसको अनुभव किया हो, तो वो जानता है कि कितना कठिन होता है उसको ढूंढना कहाँ है और उसको निकालना। वो एक छोटा सा पिन पॉइंट होता है, ईगो इज लाइक दैट। लेकिन पूरा हमारा ध्यान उस सीमित चीज के ऊपर केंद्रित हो जाता है। वहीं से अहंकार के बोध का, अहम बोध की उत्पत्ति होती है। अहम बोध क्या है? बहुत कुछ है जीवन में। अभी छोटी सी चीज है, मैं बाथरूम गया, मेरे हाथ में एक चोट लग गई, अचानक ध्यान, अरे आता है ना मनुष्य का, एक चोट लग गई। अब अगर मैं उसको देखने लग जाऊं, मुझे बैंडेड चाहिए, टेटनस चाहिए, वो तो कितनी सारी चीजें जीवन में खो दूंगा। तो अहम बोध क्या है? चेतना को सीमित हो जाना। अब उसका कारण क्या है? चेतना हमारी एक छोटे से स्व पे केंद्रित हो जाती है। तो अब इसके मूल में कहां है, क्या है? चेतना की गति है। चेतना जब सीमित हो जाती है, एक होल में घुस जाती है, छिद्र के अंदर, तो पीड़ा होती है। अब आप देखिए, इसको अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन के समय सबने अनुभव किया होगा, कोई भी व्यक्ति 30 के ऊपर जाता नहीं है बिना कुछ मोमेंट्स या कई मोमेंट्स के डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? हमारे अंदर एक स्वकेंद्रित भाव आता है। कौन सा स्वकेंद्रित? वो वाला स्वकेंद्रित नहीं जो सच्चा स्व है, स्वकेंद्रित की मेरा जीवन कैसा है, कोई समझता नहीं मुझे, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मुझे ही भगवान ने चुना है घोड़े मारने के लिए, ना जाने मैंने क्या पाप किए थे, या और भी आगे, मैं पापी हूं एक कदम आगे बढ़ के, मैं तो दंड के लिए बना हूं। अब दुनिया आपको इतना प्रेम जॉय देती है सब तरफ से, अगर हम खुले दिल से देखें हो, बेचारे फूल कहेंगे अरे हम भी हैं भाई, तुमको क्यों कह रहे हो कि हमें प्यार नहीं मिलता, हम देखो रोज तुम्हारे और मुस्कुराते हैं। लेकिन नहीं, हमको वो वाला चाहिए जो उस व्यक्ति से चाहिए। तो धीरे 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 इस भाव में हम जाते हैं और उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग मुकेश के गाने सुनना शुरू कर देते हैं, पुराने जमाने का मुकेश। अब मुझे पता नहीं आज के समय में ऐसे कोई ट्रैजिक सिंगर्स हैं कि नहीं, अच्छे गायक हैं, लेकिन वो उन फेमस थे इसीलिए राज कपूर की फिल्मों में जितने दुख वाले गाने हैं तो आपने लगा लिए। अब क्या हो रहा है? कंपाउंड हो रहा है, ऊपर से लोग आ जाते हैं आपसे, अरे कैसा मुंह बना रखा है, चेहरा उतरा है। अब आप धीरे धीरे एक गड्ढे के अंदर गिरते चले जा रहे हैं, और उस गड्ढे के अंदर जितना गिरते हैं उतना अधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। और ये एक विशेष, इसको कहते हैं वर्लपूल, जिसमें आपकी सारी ऊर्जा सोख करके समाप्त हो जाती है, उससे बाहर निकलना हमें नहीं आता। तो क्यों? वो चेतना स्वकेंद्रित हो गई। और स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम लोग टर्न करते हैं तो पहली चीज क्या होती है? हम किस स्व को ढूंढ रहे हैं? वो जो ये सीमित नहीं है, जिसको हम हमारे बायोडेटा से डिफाइन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज, बायोडेटा रखना बंद कर दीजिए, कोई समझदार व्यक्ति नहीं रखता। ये आपको आपकी सीमाओं का इंडिकेट कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा ना, वो भी अब आपकी सीमाएं जान गया। अभी तक वो ये सोच रहा था अरे पता नहीं कौन, उसको रहने दीजिए अपने आपने बायोडेटा, आई एम मिस्टर सो एंड सो, अच्छा बस मिस्टर सो, हर व्यक्ति अपने बायोडेटा में बहुत वो हमें बायोडेटा में सीमित कर देता है। और आध्यात्मिक जीवन में हम क्या है? कुछ और है जो हमसे बहुत वृहत है, जिसको हम नहीं जानते। आप डजंट मैटर, भगवान, दिव्य, सच्चा स्व, किसी नाम से अपने आप में ही वो हमको बाहर निकाल करके विशालता की ओर ले जाता है। कौन है भगवान? हम लोग सुनते हैं सर्वव्यापी हैं। तो अब सर्वव्यापी मतलब हर जगह हैं। तो अब जब आप सर्वव्यापी को ढूंढने लगते हैं तो क्या आप केवल अपनी एक सीमा में रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। आप जाएं अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है चेष्टा। बाय द वेरी फैक्ट दैट वी आर सर्चिंग द इन्फिनिट, द वास्ट, वैदिक ऋषि कहते थे, भगवान के उन्होंने एक सेकुलर वे में भी डिफाइन किया है, और डिफाइन मतलब एक बताया उस चेतना की अवस्था क्या होती है जो दिव्यता की ओर जाते हैं. द ट्रू द राइट द वास्ट सत्यम ऋतम वृहतम. तो चेतना विशालता की ओर जाने लगती है और जब चेतना विशालता की ओर जाने लगती है तो वो अवस्था होती है जैसे कुएं के अंदर आप एक कंकड़ भी फेंकेंगे तो बड़े जोर से आवाज आती है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना छोटी सी बात पर इतना टची हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि आपको लगता है चुप ही रहो ये पता नहीं किस बात से परेशान हो जाएंगे. कुएं की तरह दूसरे होते हैं जो नदी की तरह, आपने पत्थर फेंका कौन है कोई बात नहीं फिर बह गया पत्थर. और तीसरे होते हैं समुद्र की तरह, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया थोड़ी देर के लिए समुद्र के अंदर हिलडुल हुआ उसके बाद समुद्र वैसा का वैसा आपने खेल अटकेली खेल रहा है. तो चेतना विशाल होने लगती है और चेतना विशाल होने के ये परिणाम होते हैं. ये नहीं कि इन परिणामों के लिए हम लोग करते कि हमको शांति आ जाए, पर स्वाभाविक है कि चेतना जितनी विशाल होगी उस अनुपात में हम अपनी पीड़ाओं से दुख क्लेश से मुक्त होने लगते हैं क्योंकि इनका मूल क्या है, चेतना की शुद्धता. चेतना जितनी विशाल होती है एक समय आता है जब मृत्यु, अरे वो क्वीन एलिजाबेथ वन की कहानी है ना कि डेथ डेथ कैन वेट, प्रतीक्षा करने दो, अभी मुझे अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है. वो बेचारे कुछ मंशा लेके आए हैं, मृत्यु प्रतीक्षा कर लेगी. और यहां तो हम लोग कब आएगी नहीं आएगी पर हर समय उसका मृत्यु का जाप करते हुए हम लोग जीवन जीते हैं. अरे हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, फिर ये भी होता है हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे कि नहीं, इसी में कुछ हो गया कुछ हो गया. और वो विशालता हमको मुक्त कर देती है. तो पहली चीज जो होती है चेतना को विशाल करती है. दूसरी चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइटनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. कभी किसी चीज को ऊपर से उठ के देखा है, आप देखिए सारे आपने पिक्चर देखे होंगे पेरिस के, लंदन के, टोक्यो के, न्यूयॉर्क के, दिल्ली, मुंबई, ऊपर से कितनी सुंदर लगती है दिल्ली नीचे में वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो ऊपर से ऐसे धरती कितनी सुंदर लगती है. ये जो ड्रोन व्यू होता है ना जीवन का, वो भी होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि हम चीजों को एक हाइट से देखते हैं और जब हम एक हाइट से देखते हैं तो वो बहुत चीजें जिनको हमने बहुत बड़ा बना के रखा है वो छोटी हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं. किसी ने जैसे कहा है ना कि एक लाइन है, अरे छोटी लाइन है छोटी लाइन है, अरे दूसरी लाइन बड़ी खींच दो, इसको मिटाने की क्या जरूरत है. आपने देखा है बच्चों के साथ क्या होता है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब माता पिता होते हैं वो बच्चों को कैसे देखते हैं, ये इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो बच्चा कहाँ जाता है, दादा दादी के पास. दादा दादी क्या कहते हैं, पापा को कहते हैं अरे तू भी तो ऐसा था, कहते हैं ना अक्सर कहते हैं. क्यों, अब वो हाइट उनके विजडम में बड़े हो गए. तो बड़े होकर के जब वो देखते हैं तो क्या हृदय में आता है, बड़ी सुंदर एक हिंदी में कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात. तब आप इस तरह से देखते आ रहे कि ये उत्पात करेगा, इसमें क्या है, मेरा स्वभाव है क्षमा. यहां आप क्षमा कोई सोच विचार के नहीं कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है मैं क्षमा कर रहा हूं, नहीं, ये स्वाभाविक है. आप देखते हो कि भाई कीट पतंगों का स्वभाव है, सांप का स्वभाव है डसलेगा, कुत्ते का स्वभाव है भौंकेगा, आप उसमें पत्थर लेके नहीं चलोगे. तो ये चेतना जैसे जैसे हमारी, इसको कहते हैं एसेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस. एसेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, मैं इसके कई अनुभवों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मूलतः आपकी चेतना जीवन को एक ऊंचाई पे उठ के, और ये ऊंचाई बड़ी अद्भुत ऊंचाई है, ये वो वाली ऊंचाई नहीं है जो आर्टिफिशियल ऊंचाई है. आर्टिफिशियल ऊंचाई में क्या होता है, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ये वो वाली ऊंचाई नहीं है क्योंकि ये चेतना की ऊंचाई है. और उस ऊंचाई से जब हम जीवन को देखते हैं तो ये अलग नजर आता है. बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा फोकस थे वो चली जाती, चीजें अपने मूल स्वरूप में दिखती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस आपको पहाड़ दिख रहा है, अरे वाह कितना अच्छा, इवन बिल्डिंग दिख रही है मल्टी स्टोरी कितनी अच्छी है, अंदर जाएंगे अरे यहाँ पर ये गंदगी है, ये जाला है, लिफ्ट नहीं काम कर रही है. ये नहीं कि इन डिटेल्स का स्थान नहीं है, लेकिन एक टोटल व्यू आने लगता है जीवन की, एक समग्र दृष्टि डेवलप करने लगते हैं एक हम विशालता और ऊंचाई के साथ, जो उस जिससे बहुत फर्क पड़ता है. तीसरा, चेतना हमारी गहराई में प्रवेश करती है। गहराई में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि रोज हम लोगों को थोड़ी ऊर्जा चाहिए, थोड़ी खुशी चाहिए, गम चाहिए नहीं लेकिन है खुशी, एक खुशी आपको चाहिए, दो गम फ्री मिलेंगे। वो जीवन का एक पुराना विधान है, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि कोई भी खुशी अबाधित बिना सफरिंग के नहीं मिलती है, ये कृपा है। नहीं तो आदमी उसी शर्ट में बड़ा खुश होकर पूरा जीवन बिताएगा, दैट इज नॉट, वो प्रगति की बाधक है। तो इसलिए खुशी के साथ वो दुख जुड़ा हुआ है, याद दिलाने को, इम्परफेक्ट है इसे मत रुक जाना। खैर हम ये ढूंढते हैं तो ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? ये व्यक्ति, ये मिल गया मेरे सपनों का राजकुमार, माई प्रिंसेस, माई चाइल्ड, ये तो मेरे जीवन का सब कुछ, ऐसे हम जीवन जीते हैं। और थोड़े समय बाद क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बातें हम लोग मौन में ही समझ लें तो अच्छा है, और सब समझते हैं इसलिए हृदय हृदय में मुस्कुराते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो हम क्या होता है जीवन में एक सिनिक बनने लगते हैं, हम कहते हैं जीवन ही ऐसा है, कंडेम करने लगते हैं, अरे हम गलत जगह जा रहे थे, हमको अनलिमिटेड की चाह है, ये तो लिमिटेड है, वो तो बेचारा खुद ही ढूंढ रहा है। कोई व्यक्ति लिमिटलेस प्रेम कैसे दे सकता है, लिमिटलेस जॉय कैसे दे सकता है, उसके खुद के अंदर नहीं है। लेकिन हमारी गहराई में हर चीज का स्रोत है, और इसको बड़े कॉमन सेंस से देखें, अगर इस सृष्टि का ओरिजिन एक है तो क्या कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसमें वो सृष्टि का ओरिजिन ना हो? द मोमेंट वी से कि हो सकता है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल का एक अलग उद्गम है, इजंट इट? यही हमारी श्लोक है ना उपनिषद में, पूर्णमिदंग पूर्णमदंग पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब ये क्या है, द फुल द होल द इन्फिनिट इज प्रेजेंट इन ईच इन्फिनिटेसिमल। कितनी अद्भुत बात है, और उसकी ऊर्जा से सपोर्टेड है, इसीलिए वो इंटरकनेक्टेड है पूरी सृष्टि के साथ, अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता अलग। मनुष्य क्या करता है, हम अलग हैं, सबसे अलग हैं, आपकी एक पहचान, ये सब सही है। लेकिन हम जब अपने को कट ऑफ करके देखने लगते हैं कि सृष्टि भगवान सब कुछ मेरे लिए बना है, तो वहां समस्या होती है। इसका कोर्स करेक्शन हो जाता है, क्यों? हमारे अंदर ओरिजिन को जब हम ढूंढते हैं, जो हमारी गहराई में, हर किसी की गहराई में छिपा है, इवन एटम्स की गहराई में वही छिपा है, लेकिन मनुष्य के साथ ये प्रिविलेज है कि वो उस ओरिजिन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये अब प्रिविलेज है क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में मनुष्य वहां पर पहुंच गया है जहां अब वो अपने ही ओरिजिन को जान सकता है। इसको कई सिमली से बताया गया, सरपेंट बाइटिंग इट्स ओन टेल इत्यादि इत्यादि। तो हम अपने ही ओरिजिन को ढूंढ सकते हैं, और जब हम ओरिजिन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ओरिजिन क्या है, जैसे कल्पना करें हम, वह ओरिजिन जिससे अनेकों अनेकों प्लैनेटरी सिस्टम्स गैलेक्सीज निकली हैं, एक एक चीज के अंदर वो नॉलेज ज्ञान विज्ञान डाला गया है जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। हम कल्पना कर सकते हैं कि उस ओरिजिन में कितनी शक्ति ऊर्जा ज्ञान और वह आनंद जो हम देखते हैं महसूस करते हैं लेकिन उसका स्रोत नहीं जानते, यहां वहां खोजते हैं। कैन वी इमेजिन वॉट दैट ओरिजिन इज? डजेंट मैटर आप किसी भी नाम से बोलो। और उस ओरिजिन में जब हम कॉन्टेक्ट में आते हैं अपनी गहराई में उतर के, तो फिर हम वही अनलिमिटेड लिमिटलेस इन्फिनिट एनर्जी इन्फिनिट पावर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस इन्फिनिट डिलाइट इन्फिनिट नॉलेज के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तब हमारा परमानेंट पेट्रोल का चार्जर से जुड़ गई है, अब हमको इधर उधर प्लग करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी बिकम लाइक लैम्प्स विच आर रेडिएटिंग लाइट, नॉट लुकिंग फॉर वेयर आई कैन प्लग इन टू फाइंड सम लाइट फॉर माई सेल्फ। ये इसको कहा जाता है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। आमतौर पर हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, वो हमको अपने अंदर और स्वतः ही मिलता है क्योंकि वो ओरिजिन है, आपको देगा ही देगा। इसको बहुत तरह से वेदों में उपनिषदों में बताया गया है, एंड वी कैनॉट इवन इमेजिन वॉट दैट लाइफ इज लाइक, ए न्यू लाइफ। इसलिए उसको कहा गया है नई चेतना है, नया लाइफ। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है माने कि आमतौर पर हम जीवन में हमारी चादर जब फटती है तो हम क्या करते हैं, नई खरीदते हैं, नई पैसा है तो हम पैबंद लगाते हैं, दाग लग गया तो हम साफ करते हैं, इधर साफ करते हैं उधर साफ करते हैं, चादर बहुत दागदार हो जाती है। और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, एक नई चादर, और ये नई चादर उस मटेरियल की जिसमें दाग नहीं लग सकता। कितनी अच्छी चीज है, मतलब आपको वो एक ऐसी चादर है जिसमें दोष का स्पर्श नहीं हो सकता। इट इज लाइक चेंजिंग द एंटायर ब्लैंकेट और चेंजिंग द एंटायर कवर दैट वी आर शीट, चेंजिंग द एंटायर शीट। नहीं तो हम अभी तक पैबंद लगाते हैं, पैच वर्क या उसको सुपर रिन की चमत्कार, या फिर हम उसको बेच के या खरीदते हैं दूसरी, लेकिन वही मटेरियल की होती है तो फिर वो बात वही होती है, चेंज नहीं होता है कुछ। तो इसको माँ कहती हैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे चीजें काम करती हैं, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जब होती है, जब हमारी चेतना बदलती है तो हमारी दृष्टि बदलती है। हम लोग बचपन से एक जन्मजात कैटरैक्ट के शिकार हैं, और वही कैटरैक्ट, वो हम ह्यूमन लेंस जिसको कहते हैं, उससे ही जीवन देखते हैं, और वो लेंस हमको बचपन से ही दे दिया जाता है। एक तो मनुष्य जीवन मैटर में जन्म लिया, ऊपर से माता पिता, वो देख पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तू देख कहाँ है, अब वहां से शुरू हो जाता है वो कैटरैक्ट को, और क्लास में भी, स्कूल में भी, सब जगह यही चीज हमारे जीवन में। सो धीरे धीरे वो कैटरैक्ट और बड़ा होता जाता है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। और फिर एक टाइम आता है जब हम देखते हैं कि ये तो गलत दृष्टि गलत है मेरी जीवन को देखने की। कछुए और खरगोश के रेस की संभावना कितनी है, और अगर रेस करनी है तो कछुआ इतना तो समझदार है कि खरगोश से कह देगा कि भैया रेस करना चाहते हो, आओ जरा पानी में कर लें। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। कहीं होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक रैबिट सो गया, बचपन में ऐसी कहानी हम पढ़ते थे, रैबिट सो गया, अरे वो तुम उस पर डिपेंड कर रहे हो रेस जीतने के लिए, नहीं सोया तो हमारी रैबिट के साथ रेस ही नहीं है, किसी के साथ रेस नहीं है। एलिस इन वंडरलैंड में बड़ी सुंदर एक बात है, वो कहते हैं हम कौन रेस में जीता, तो वो डोडो कहते हैं ऑल हैव वन द रेसेस, ऑल हैव कम फर्स्ट। अब ये दृष्टि अपने आप डेवलप होती है, क्योंकि आप देखते हो कि हम किसी के साथ रेस में नहीं हैं। और ये कब आता है, जब हमें एक जीवन का पर्पस मिलता है। नाउ कई बार लोगों से पूछो पर्पस और गोल इन दोनों में अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। जनरली आप किससे पूछे कि पर्पस जीवन का क्या है तो गोल बता देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड गोल। गोल बिल्कुल आपको याद, बाहर कुछ होता है जहां हम जा रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं हम, मेरा गोल है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद मैं खूब नामी गिरामी डॉक्टर बनूं, वो पर्पस नहीं है, वो गोल है आपका। आप एक लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हो, और लक और प्रयोजन क्या होता है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है वो फुलफिल हो। जैसे एक फूल है, उसका पर्पस है जीवन का खिलना, जिस रंग और सुगंध उसमें भरी हुई है उसका पूरी तरह प्रकट करना, वह उसकी महत्ता है। अगर गुलाब बनना चाहेगा सूरजमुखी जैसा, या चमेली बनना चाहेगी सूरजमुखी जैसी, वो थोड़ा करेक्ट सिमिली है, तो प्रॉब्लम होगी। सबकी अपनी जगह है, लेकिन वो प्रयोजन जो है हमारे जीवन का, क्या प्रयोजन है, वो एक अनूठी चीज है, वो किसी कंपैरिजन में नहीं होती है, वो बाहर होती ही नहीं, वो एक अभ्यांतरिक चीज है जो हमें डिस्कवर करनी होती है। पर्पस हमारे जीवन का क्या, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, क्यों है हम इस संसार में। जब हम एक बाहरी चीज को पर्पस बना देते हैं, वो जिसको गोल हम कहते हैं, तो वो मिलने के बाद फिर हमारा जीवन खाली होने लगता है। तो अक्सर आप पूछेंगे एक एडोलेसेंस में, क्या है पर्पस, अभी मैं इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसमें हो जाऊँगा, हो गया आप डॉक्टर बन गया, अब क्या पर्पस है, अब मुझे अपना एक हॉस्पिटल बनाना है, बन गया। और कोविड के दौरान तो कितने बन गए, 3 साल में बन गए कोविड हॉस्पिटल के नाम पर, ना जाने क्या क्या हुआ, उसकी बात ही ना की जाए तो अलग बात है। तो ये एक सब हो गया आपका, उसके बाद क्या। कुछ लोग ये भी बोलते हैं शादी करना, बच्चे, ये कोई पर्पस है, एनीवेज कहते हैं लोग, उसके बाद बच्चों के बच्चे, इस तरह जीवन, और लास्ट में हम कहते हैं कि ये तो सब चले गए मेरे जीवन से। तब कहते हैं सुना था कोई स्पिरिचुअलिटी की बात एक बार ऑरा यूनिवर्सिटी में जाके हमने सुनी थी, कुछ ट्राई करते हैं हम लोग, कुछ स्पिरिचुअल सुन रहे थे। टू लेट, टाइम टू अप्लाई टू द ग्रेवयार्ड और द शमशान। तो ये समस्या होती है। लेकिन जब हम पर्पस को लेके चलते हैं, स्पिरिचुअल पर्पस एक बड़ी अद्भुत बात है, वो आपको हमेशा युवा रखती है, युवा रहने का अक्सीर तरीका, अचूक उपाय। कोई विटामिन ई की क्रीम और ये टैबलेट और वो टैबलेट, ये नहीं है। आपके अंदर सतत प्रगति की चाह होगी ना, आप युवा रहेंगे। ऑरविल का हम लोगों ने नाम सुना है। कल्पना हम कर सकते हैं कि माँ जब 91 ईयर्स की है तब उन्होंने ऑरोविल मैनिफेस्ट हो रहा है, और उसके 3 वर्ष पहले उन्होंने एक कन्वर्सेशन में बताती हैं। हम कल्पना कर सकते हैं क्या प्रगति की चाह है। ये जो प्रगति की चाह है, ये आध्यात्मिक जीवन हमको ले आता है। क्यों? क्योंकि वो अनंतता की ओर जा रहा है, वो उसका कोई सीमित एंड पॉइंट नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका एंड पॉइंट क्या है, तो मैं तो कहता हूं एंड पॉइंट क्यों चाहते हो, रुकना चाहते हो, क्या मजा आएगा, थोड़ी देर रुक जाओगे। परमानेंट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट की स्पिरिचुअल लाइफ इज एन ओपनिंग इनटू द इन्फिनिट। इवन जब आप भगवान के साथ एक हो जाते हो, उसके बाद भी किसकी प्रगति, सारी सृष्टि में वो है, तो कैसे कैसे नाना प्रकार से उनका प्रकटन हो। श्री कृष्ण ये कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन मैं कर्म ना करूं तो ये सृष्टि पीछे की तरफ चली जाएगी। श्री अरविंद भी कहते हैं देयर इज नथिंग दैट आई नीड फॉर माई सेल्फ, वेदर द सुपर माइंड और सच्चिदानंद, वो सब वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन क्रिएशन के लिए एक जॉय, ये जो डिलाइट होती है ना, जो एवर रिन्यू करती रहती है अपने आप को नए नए क्रिएटिव चीजों में, प्रकटन में, वो स्पिरिचुअल लाइफ से प्रकट होती है, वो उसका स्रोत है। आप भगवान को देखिए कि कैसे वो नित नवीन, कितनी गैलेक्सी स्टार्स हर समय प्रकट हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएटर, क्रिएटिविटी के साथ, और एकदम सही जगह जाके निशाना, नहीं तो केओस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर वो एक क्रिएटिव ऊर्जा का द्वार खोल देती है स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो हम लोग सोचते हैं ना, अरे स्पिरिचुअल लाइफ वाले लोग तो दुनिया से दूर, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल पीपल, ट्रू स्पिरिचुअल पीपल आर वेरी क्रिएटिव। आप देखिए सम ऑफ द बेस्ट पोइट्री वेस्ट में, ईस्ट में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सम ऑफ द बेस्ट पोइट्रीज, काव्य रचनाएं, लिटरेचर, ये आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश कर गए उनके अंदर से ये प्रकट हुई है। अब ये आध्यात्मिक जीवन को हर दिशा में जाना है, भारतवर्ष में ये ना आप नृत्य में ले जाइए, नाट्य शास्त्र में, आयुर्वेद में, किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए, विमान शास्त्र, सब कहां से ओरिजिनेट करते थे, ऋषियों से। तो ये एक आइडिया जो स्पिरिचुअल लाइफ का है कि भाई वो तो बस आंख मूंद के बैठ जाते हैं। हम आंख इसलिए मूंदते हैं कभी कभी कि आंख हमारी खुल जाए, वो कैटरेक्ट दूर हो जाए। ये वाली आंख हमको वो आंख खोलने नहीं देती है, सारे दिन ये बाहर की आंख हमको जो दिखाती दे रहती है। बड़ी सुंदर उपनिषदों में, केन उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है, जब वो डिस्क्राइब करते हैं वो परम चेतना क्या है, तो कहते हैं चक्षुष चक्षु, आंख से नहीं देख सकते लेकिन जिसके द्वारा हमारी आंखों का शक्ति ऊर्जा, जिसके कारण हम देख पाते हैं, चक्षुष चक्षु, हम सुन नहीं सकते लेकिन जिसके कारण हमारे अंदर सुनने की शक्ति आती है, मन का जो मन है, मन की भूमि से हम उसको नहीं जान सकते लेकिन जिसके द्वारा मन चीजों को समझने की चेष्टा करता है, तो वो ओरिजिन है। जब हम उससे कांटेक्ट में आते हैं तो पूरा जीवन इसके सभी क्षेत्रों में, चीजों को देखने की चीज बदल जाती है, समझ बदल जाती है, और जब समझ बदल जाती है तो राइट एक्शन अपने आप आता है। और राइट एक्शन, एज आई सेड, इज नॉट नेसेसरली द गुड एक्शन और द बैड एक्शन फ्रॉम द ह्यूमन स्टैंड पॉइंट। उस स्टैंड पॉइंट को कहते हैं ट्रांस ह्यूमन या सुप्रा ह्यूमन, किसी तरह ह्यूमन बीइंग गुड और बैड के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं, और जरूरी है, ये नहीं कि वन शुड डिस्कार्ड इट। वो एक लाठी है जो हमारे लिए जरूरी है, एक लैंप है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में आप चले आते हो तो आप उस लैंप को लेके नहीं चलते हो। कोई कहेगा भैया दिन हो गया है, तो गुड और बैड इसमें जो द्वंद में हम जीवन जीते हैं, प्लेजर और पेन, ये चले जाते हैं, उसकी जगह एकत्व प्रकट होता है। और वो कैसे प्रकट होता है, वो बड़ी सुंदर एक वो है ना, हम सबने सुना होगा, सारी चीजें डिस्टॉर्ट बॉलीवुड में हो गई। गाना था बड़ा सुंदर, वो एक्चुअली वो बुल्ले शाह की वाणी है, तेरी तलवार के नीचे मैं नचियां करके थैया थैया। व्हाट इज ही सेइंग, मेरे सिर पे तलवार नाच रही है और मेरी बोटी बोटी टुकड़े होने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर की कहानी हमने सुनी है, श्री अरविंद अलीपुर जेल में कहते, लेकिन मेरा हृदय तो आनंद से भरता जा रहा है क्योंकि तलवार के पीछे मैं तुझे ही देख रहा हूं। अब वो गाना क्या बन गया उसका, उसकी बात ना ही करें। तो ये भाव कहां से आई, ये कहते हैं एकत्व दृष्टि। सुख में जब जीवन अच्छा है, अरे भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन जब सिर के ऊपर तलवार लटक रही है, अरे बड़ी कृपा है, तू मुझे इतना प्रेम करता है कि तूने तलवार दिखाई कि अब याद कर मुझे, नहीं तो तो अब आप तलवार के नीचे अब आप क्या करोगे स्मरण करोगे, isn't it? तो आप उसमें भी कृपा को देखने लगते हो। एकत्व दृष्टि, समदृष्टि इज नॉट इंडिफरेंस, इंडिफरेंस एक अलग चीज है, समदृष्टि एकत्व के भाव से प्रकट होती है। गुड और बैड उसी प्रकार से, अरे उसका ये हो गया जीवन में, फेल हो गया तो बड़ा बुरा हुआ उसके जीवन में, लेकिन जो एकत्व की दृष्टि है उससे जो सम का भाव निकलता है उसमें ये होता है कि फेल हुआ है, अच्छा भगवान ने इसके लिए कोई दूसरा द्वार खोल के रखा है, इसको अभी पता नहीं है वो खुलेगा। इस लड़की ने रिजेक्ट किया है, अब तो खैर जमाना बदल गया है, लड़कियां रिजेक्ट करती हैं जो बहुत अच्छी बात है, हार्ट ब्रेक हो गया उसने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं है, देयर इज समवन एल्स और समथिंग एल्स, व्हाई समवन एल्स, वो प्रेम का अल्टीमेट स्रोत, वो वेट कर रहा है चिर प्रेमी। तो ये जो भाव जो होता है समदृष्टि का, एकत्व की दृष्टि, एकत्व की दृष्टि मतलब ये नहीं कि ऑल इज सेम, वननेस इज नॉट सेमनेस, यूनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, वननेस इज विविधताओं में एक को देख पाना, अनेकता में एकता, और एकता में अनेकता छिपी होती, इसको समझना। तो जब ये दृष्टि बदलती है तो ये सब कुछ प्रकट होने लगता है अपने आप, इट इज लाइक ए कॉन्स्टेंट रिविलेशन। ये कोई ये नहीं समझने की चीज, अच्छा ऐसा हुआ है तो क्या हुआ होगा, मैं सोचूं जरा भगवान की क्या मंशा होगी, इट इज गॉन। जैसे आप चीजों को देखते हो वैसे देखते हो, यू सी इट, अब आप सोच के नहीं देखते हो, ये आपके अंदर चादर बदल गई, कैटरैक्ट उतर गया, तो बस यू सी। और जब हम इस तरह से जीवन को देखते हैं तो राइट एक्शन, राइट परसेप्शन, बुद्ध के जो है ना एट फोल्ड पाथ, उसमें आप देखें बड़े, उन्होंने बड़ी अच्छे चतुराई से लिखी है इस बात को, राइट परसेप्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ईगो की दृष्टि है, इसीलिए हम भगवान के खेल को कभी नहीं समझ पाते। ईगो की दृष्टि हर चीज को स्वकेंद्रित करके देखती है, और जो भगवान की दृष्टि है उस मोमेंट को तो देखती है, ऐसा नहीं कि डिस्कार्ड करती है, लेकिन वो टोटैलिटी में उस मोमेंट को देखती है। जैसे कोई व्यक्ति जब एक 20 साल का बच्चा अगर बताए अरे मैं उस एग्जाम में फेल हो गया, उसका देखिए दिल टूट जाता है, या उससे मुझे धोखा हो गया, दिल टूट जाता है। अब वो जाके अपने दादाजी को बोले, दादाजी 70 साल के, 75 साल के, बोले बेटा मैं भी फेल हुआ था, क्या बात है इसमें तो बच्चा साल वो क्या हो गया उसका इक्विवेलेंट, अरे होता है हार्ट ब्रेक, कोई बात नहीं, अब क्या हुआ है डिफरेंस, अब वो दृष्टि बदल गई है, विजडम आ गई है, तो वही चीज जो इतनी बड़ी लग रही थी उस मोमेंट में अब वो विशालता में इट चेंजेस इनटू समथिंग एल्स. वो देखते हैं कि ये तो स्टेप से कोई बात नहीं है, गिरा है, चल उठ, खड़ा हो, चल चल. समझदार दादा लोग तो यही करते हैं, चल बेटा कोई बात नहीं है, उठ. हम भी ऐसे गए थे, इस रास्ते से गए थे, गुजरे थे. तो इस प्रकार से जीवन को देखने की दृष्टि बदलती है, तो एक उसमें एक व्यापक और समग्र शांति आती है. वो शांति नहीं जो शव की शांति है, और जैसे किसी ने डिस्टर्ब किया, अरे हम मेडिटेशन कर रहे थे, हमको क्यों डिस्टर्ब किया. माँ से किसी ने बोला कि माँ मैं आपने मुझे काम दिया है कारपेंटरी का, वो व्यक्ति जो मेडिटेट करता है आश्रम में, वो मुझे आके बोलता है जिसको बंद करो, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ. माँ कहती तुम अपना काम करो, उसको ध्यान करना नहीं आता है. जिस दिन ध्यान करना आ जाएगा, युद्ध क्षेत्र पे भी ध्यान कर लेगा, तुम काम करते रहो. तो ये जब जीवन को हम इस तरह से, तो वो सतत सहज समाधि, ये कहा है ना, जो बोलूं सो वेद कहावा, जहां पग धरूं सो तीरथ. तो बाहर से हमको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, जहां हम जाते हैं वही भगवान का घर बन जाता है. तो इट इज दिस इनर लाइफ इज ए वेरी रिच लाइफ. जो इनर वेल्थ है जिसमें शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सौंदर्य बोध, जिससे हम देखने लगते हैं, तो वे चीजें जिनको हम बाहर से देख के अरे अरे देखो, वही चीज के अंदर हमको सुंदरता दिखाई देने लगती है. देखिए जीवन कितना बदल जाए. अभी तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही अटके हुए हैं. कई लोग तो स्किन का कलर कैसा है, भूरा है, उजला है, काला है, तो भाई सबसे अच्छा तो ब्राउन है, मतलब करेक्ट आंच में सिका है. जो कम है, गोरा है, मतलब ठीक से सिका नहीं. जो काला है, जल गया. लेकिन वो हमारे इंडियंस का तो ज्यादातर करेक्ट आंच में जो रोटी का कलर होना चाहिए. अब ये विजन बदलता है आपको. ये तो दिस वे आप हंसते हो जीवन के ऊपर, क्योंकि आप कहते हो किन चीजों पे हम इतना शोक विलाप, ये चला जाता है. बड़ी सुंदर एक बात बताई है ईश उपनिषद में, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत. कैसा मोह, कैसा शोक, जब हम एकत्व में जीते हैं. अंत में वो व्यक्ति संसार से भागता नहीं है. पता नहीं कहां से ये एक दिमाग में सब हम लोगों के, वो संसार से दूर चला जाता है. अगेन भारतवर्ष में जो ऋषिस थे, क्रिएटर्स थे, वॉरियर्स थे, योद्धा थे, स्वयं भी युद्ध लड़ना जानते थे, वेपन्स उनके पास, श्री राम को अगस्त ऋषि देते हैं, विश्वामित्र ट्रेनिंग देते हैं, वशिष्ठ ऋषि एक दंड से पूरी आर्मी को निकाल सकते हैं. तो ये वो इन सब चीजों में थे, क्रिएटर्स थे, लिटरेचर में, पोएट्री में, दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल. दे लीड लाइफ, बट दे लीड लाइफ फ्रॉम ए डिफरेंट कॉन्शियसनेस. ये मूल चीज स्पिरिचुअलिटी की है. इट्स नॉट विड्रॉल फ्रॉम लाइफ बट अ चेंज ऑफ लाइफ. और जीवन कैसे बदलता है, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. तो एक बहुत ही अद्भुत और ना केवल एक सत्य प्रकट हो रहा है हम सबके सामने, बल्कि उससे हमारा जीवन हर लेवल पे इम्पैक्ट करता है. ये एक ऐसी चीज नहीं है जब हम केवल थोड़ी देर शांत हो गए, नहीं. शिव की शांति, जब वो संहार भी करते हैं, पूरी पृथ्वी में तांडव कर रहे हैं, तो भी उस शांति में है. तो उसमें हम प्रवेश करने लगते हैं जहां रेस्ट एंड एक्टिविटी ये साथ साथ चलती हैं. फोर्स और शांति ये दोनों एक साथ चलती हैं. भगवान की चेतना में ये दोनों एक साथ हैं. हमारे चेतना में या तो ऐसे होगा या वैसे होगा. तो ये जो एकत्व में प्रवेश है, ये इसका मूल चीज है. आध्यात्मिक चेतना हमको एकत्व में ले जाती है, जिसके कारण और कई चीजें होती हैं. नया ज्ञान प्रकट होने लगता है, इंट्यूशन, जिसके कारण हम चीज़ों को डायरेक्टली देखने लगते हैं. वो जो हम दिमाग के एनालिसिस से नहीं समझ पाते हैं, वो डायरेक्टली इंट्यूशन हमको दिखा देती है. एक ऐसी शेरविंद इसको कहते हैं स्टैब ऑफ लाइट, जो एकदम चीज़ों की गहराई में. और चूंकि हमारा जीवन अंदर से शांत और सामंजस्यपूर्ण, हारमोनियस होने लगता है, तो बहुत सारे रोग जो डिसहारमोनी के कारण है, जो शरीर के अंदर जड़ लेके बैठे हुए हैं, दैट दे आर मोर डिफिकल्ट. बहुत सारे आंतरिक डिसहार्मोनी के कारण है वो अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको ठीक करने की वो संजीवनी बूटी हाथ में लग गई है. तो डॉक्टर का बिल बच जाता है. तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअल लाइफ के साथ आती हैं. ये पैकेज है, पीस मील नहीं आती है. मूल चीज है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. चेतना बदली तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें एक साथ अपने अंदर चेंज होनी प्रारंभ हो जाती हैं. ये एक बैकग्राउंड है. 10-1 मिनट हम लोग रखते हैं. कोई प्रश्न अगर हैं तो आई विल बी हैप्पी टू. हाँ बोलिए. कोई बात. हाँ ठीक है.
आदि शंकराचार्य को जो अद्वैत वेदांत है और श्री अरविंद के जो पूर्ण योगा है, तो वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू अदर और इट इज सम.
ठीक है ठीक है. पहली चीज सिंबल का जो बात है, सिंबल एक रियलिटी को प्रकट करने का एक माध्यम होता है. इस पर एक बहुत विस्तार में टॉक मिल जाएगी आपको वैसे औरोमा पे, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा. लेकिन मूल रूप से ये जो शेयरविंद ने जैसे जीवन के सत्य को देखा है वो प्रकट कर रहे हैं. तो असेंडिंग ट्राइंगल क्या है? वो जड़ तत्व के अंदर अभीप्सा है. कैसे अभीप्सा है? लाइफ, लाइट एंड लव, इनके द्वारा वो ऊपर उठने की चेष्टा कर रहा है, चेंज हो रहा है. तो ये असेंडिंग ट्राइंगल है जो ऊपर की ओर जा रहा है, और उसके प्रत्युत्तर में भगवान की कृपा आंसर करती है. भगवान के जो त्रिविध रूप, त्रिविध एस्पेक्ट हैं, सत चित आनंद, तो वो डिसेंडिंग ट्राइंगल है. उनका जो परफेक्ट मीटिंग पॉइंट है जहां दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट, वहां स्क्वायर बना हुआ है. स्क्वायर परफेक्शन का प्रतीक होता है, पूर्णता का. तो वो सुप्रामेंटल, सुप्रामेंटल इज परफेक्ट कॉन्शियसनेस, ये शेरविन ने बताया है. जल सृष्टि का प्रतीक है. जल के अंदर ही जीवन प्रारंभ हुआ है, अगर आप बायोलॉजिकली भी पढ़ेंगे तो. जल और उसके बीच में सृष्टि के केंद्र में कमल रूपी स्वयं अवतार विद्यमान है, जो इस सृष्टि को अब एक नई दिशा में, नई ऊर्जा की ओर, नई चेतना की ओर ले जा रहे हैं. तो वो स्वयं श्री अरविंद आप कह सकते हैं. तो ईश्वर अरविंद का सिंबल इस सत्य को, मैंने नेचुरली इस पर पूरी एक टॉक हो सकती है और है, और वहाँ पे आपको मिलेगी, मुझे पता नहीं कहाँ पर, लेकिन है और वहाँ पे एक टॉक है. शंकराचार्य का वेदांत अल्टीमेट नहीं है, ये मुझे पता है. मैं कह रहा हूँ एक ऐसा स्टेटमेंट जो आश्चर्य हो, लेकिन क्योंकि मैं जब मेरे प्रश्न, अल्टीमेट चीज क्या होती है जो आपको अल्टीमेट रिकनसाइलिंग आंसर दे दे. लेट मी, एक पूर्व धारणाओं से हम नहीं जाएंगे. हाँ शंकराचार्य महान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महान नहीं है, हर एक व्यक्ति महान है. लेकिन अल्टीमेट आप क्या ढूंढते हो किसी भी दर्शन में? अब यहां मैं दार्शनिक लेवल पे बात कर रहा हूं. आप अल्टीमेट रिकंसिलिएशन ढूंढते हो, जीवन जैसा है और भगवान या अल्टीमेट रियलिटी का जो भी दर्शन है हमारा. तो अल्टीमेट रिकंसिलिएशन, कम से कम मैं जब मेडिकल कॉलेज में, मेरा एक फितूर था मेडिकल किताबों के साथ साथ ये सब पढ़ना. तो शंकराचार्य को जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को तो यही लगा कि बहुत मेधावी हैं, पर वो अल्टीमेट आंसर नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? अब उन्होंने 2-3 तरीके से सृष्टि को समझाने की चेष्टा की है. अब समस्या क्या है? देखो, पहले लेट्स स्टेट द प्रपोजिशन, डिवाइन इज सच्चिद आनंद. यही तो अनुभव शांति में है, आनंद में है. सृष्टि क्या है? इसका ऑपोजिट है, इजंट इट? मोर ऑर लेस. ये नहीं कि शांति नहीं है, लेकिन बहुत अशांति भी है और दुख भी है, पीड़ा भी है, ये सब है. ये सारी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम यही है, पैराडॉक्स. तो अब वो इसको एक, अब आई नो, अब मैं इसको थोड़ा संक्षेप में करके, इल्यूजन. इल्यूजन क्या है? कि हम इस जीवन को नहीं अनुभव कर रहे हैं, ठीक से नहीं देख रहे हैं. तो अब यह तो ठीक है, यहां तक ठीक है कि इल्यूजन है, हम सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं. लेकिन जब हम सही दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं ये एक, दो तरीके से वो देखते हैं कि ये एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज है, आप इससे बाहर हो जाओगे. ये एक ऐसे बिल्डिंग की तरह है जो एक स्वप्न महल है जो कलैप्स हो जाएगा. जैसे स्वप्न में आप चीजों को देखते हो, उनकी सत्यता तब तक है जब तक आप जागे नहीं हो. जाग जाओगे तो स्वप्न में आपने बड़ा भवन देखा, किसी की मृत्यु देखी, सब कलैप्स हो जाता है. ये एक बहुत अपीलिंग आर्ग्यूमेंट है. तो लोग जब उनको ये कहते हैं कि नहीं, लेकिन ये रियल लाइफ में तो ऐसे ये स्वप्न नहीं है, मतलब पेन होता है, हम लोग रियल होता है। तो उन्होंने इसको एक दूसरे ढंग से समझाया जो बड़ा अपीलिंग लगता है, वो है प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक सत्यता होती है, व्यवहारिक भूमि पर ये अप्लाई करता है लेकिन अल्टीमेट रियलिटी में नहीं अप्लाई करता है, वेरी अपीलिंग। पर प्रश्न तो वही रह जाता है कि फिर ये जो स्वप्न है किसने देखा, कहां से आया, ऐसा दुस्वप्न क्यों दिखाया जा रहा है हमको, ये पिक्चर तो मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे किसने इस फिल्म के बीच में बैठा दिया जिसमें ये सब दिख रहा है। आपने तो कह दिया कि भाई इस पिक्चर से आप आ जाओ बाहर, ये तो पिक्चर है, रियलिटी नहीं है। बट हु पुट मी देयर और व्हाई डिड आई गेट इन देयर, ये अल्टीमेट रिकंसिलेशन नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें कि इससे बड़ी समस्या होती है, इंडिविजुअल की रियलिटी क्या है, अब वो उसको प्रैक्टिकल रियलिटी बोल के कह देते हैं, पर उससे एक और गहन समस्या होती है बुद्ध के अनात्मवाद की तरह, कि अगर कोई इंडिविजुअल की अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, शुद्ध अद्वैत उसमें अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब वो उसको एक्सप्लेन करते, मैं उसके फिलोसॉफिकल जंबल्स में नहीं जा रहा हूं, पर आई एम कमिंग टू द रेलेवेंट पार्ट। तो फिर साधना, योग, लिबरेशन, इसकी क्या महत्ता है? आप और मैं केवल एक प्रैक्टिकल डॉक्टर आलोक पांडे एग्जिस्ट, बट देर इज नो रियल रियलिटी बिहाइंड दिस एज एन इंडिविजुअल, देर इज ओनली वन विदाउट ए सेकेंड। तो मैं क्यों साधना, जप, योग, मुक्त, कौन मुक्त होगा जब जो है ही नहीं, वो मुक्त कैसे होगा, वो तो बंधा भी नहीं था क्योंकि वो था ही नहीं, और वो जो एक है वो तो बंधा नहीं है और मुक्त नहीं होता, तो ये तो बस एक चल रहा है, तो इसमें मैं एफर्ट करके उसको प्राप्त करने की जगह जीवन चल रहा है, एक दिन ये इल्यूजन समाप्त हो जाएगा, फिर रीबर्थ की भी समस्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि शंकराचार्य और बुद्ध भी अति, मतलब इंटेलेक्चुअली वन ऑफ द साउंडेस्ट माइंड्स, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, अगर उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, अब उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये मूलभूत प्रश्न रह जाते हैं कि यदि ये सब स्वप्न है तो कौन जाने कि जो मैं भगवान का अनुभव कर रहा हूं वह भी स्वप्न क्यों ना हो, कहां अंत होता है फिक्शन का। तो बुद्ध ने तो ये तक ले लिया, अनात्मवाद वहीं से आया, तो फिर ये अनुभव कहां से आया, कौन ले आया? तो अब आप या तो आप एक मिस्टीरियस मिस माया एंटर थ्रू द साइड डोर, विच इज अगेन क्रिएट्स ए चैलेंज फिलोसफी की, चर्चन में बात कर रहा हूं कि ये कहां से आ गई, वो ब्रह्म थे ये बीच में, हाउ डिड शी कम। गीता इसका संकेत देती है, गीता कहती मेरी ही माया है, माया को स्ले नहीं कर सकते हो, मोह को स्ले कर सकते हो, इस माया का प्रयोजन है। अब मुझे तो शेयरविन तो और आगे चले जाते हैं, इवन द गीता स्टेट्स ए मोर क्लियर अद्वैत देन शंकराचार्य इन माई व्यू पॉइंट, कि उसके अंदर एक कंप्लीटनेस है, जीवन को समझाने की चेष्टा है, उस अल्टीमेट रियलिटी उससे जोड़ने की वो तीन कड़ियां जो हैं, ये सब कुछ उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। और तब इंडिविजुअल सोल को मानती है गीता, जैसे कि सांख्य में जो दर्शन है, तो लिबरेशन का मीनिंग होता है, अगर इंडिविजुअल सोल है ही नहीं तो लिबरेशन का क्या मतलब है, हु इज गेटिंग लिबरेटेड। शेयरविंद ने उसके भी आगे, वो तो एकदम आगे ले गए, गीता भी अंत में हम तो सर्व पापे भी हो मोक्षिष्यामि मा सुचा, मोक्ष ठीक है ये सब सही है, लेकिन ये इतनी लंबी जर्नी, पेनफुल जर्नी किसने हमको डाला, कोई समझदार तो डालेगा नहीं, कोई भी पिता माता आपको एक कष्ट के बीच में नहीं धकेल देंगे, अंत में यही बोलेंगे कुछ लोगों को, अब हो गई तुम्हारी ट्रेनिंग, बड़ी कष्ट वाली है, बाहर आ जाओ, पापा आपने क्यों भेजा था मुझे, नहीं नहीं ऐसे वैसे चले गए थे, हो गया एक इल्यूजन था, आप क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ डैड यू आर, है ना। तो अब ये क्या पर्पस था इस सारी सृष्टि का और इसकी परिणति क्या है, ये शेरविन बताते हैं कि देर इज ए डीप पर्पस, ये रैंडम गेम लगता है माइटी मदर विम्स, तो वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि वो शक्ति पक्ष को इन लोगों ने टच नहीं किया, सृष्टि सृष्टिकर्ता वो ठीक है, लेकिन वो शक्ति क्यों गई, वेदों में इसका हिंट है, लेकिन उसको पिकअप नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने एक अंग से देखा। और उसका एक कारण था, सॉरी फॉर ये थोड़ा लेंदी हो गया, आपने मुझे फिलॉसफी में ड्रैग कर लिया, लेकिन इसका एक कारण ये था कि अगर आप देखो तो वेदों में समन्वयात्मक चेष्टा है, लेकिन जो उपनिषद आया, उपनिषदों ने क्या किया, वेदों के एसेंस को लिया, ज्ञान कांड, ज्ञान के भाग को लिया और बाकी सब कर्म कांड में रह गया। ठीक है, तो अब ज्ञान में क्या, वो ज्ञान भाग में मेडिटेशन और शुद्ध उस परम तत्व में चले गए। तो ये जो भाग था वेदों का जिसमें वो जोड़ने की चेष्टा करते हैं जीवन को और उस परम ज्ञान को, इट गॉट लॉस्ट। तो आप देखेंगे कि उपनिषदों की धारा से मेडिटेशन और मोक्षवादी धारा पैदा हुई, अदर वर्ल्डलीनेस, एक्सेप्ट वन उपनिषद विच इज ईश उपनिषद। तो आप देखेंगे शंकराचार्य ने तो उसमें शब्दों को ट्वीक किया, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है बाकी इसी में, बाकी सब उपनिषदों को आप ट्वीक, मतलब आप एज सच लेके आइदर वे यू कैन इंटरप्रेट। केन उपनिषद को आप मोक्षवादी धारा में इंटरप्रेट कर सकते हो, या मैं, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो है वर्ल्डी और अदर वर्ल्डी को रिकनसाइल करने का, लेकिन आप कर सकते हो अदर वर्ल्डी, लेकिन ईश उपनिषद को नहीं कर सकते हो। फिर कई लोगों ने ऐसे भी कह दिया कि ये ईश उपनिषद एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब है लेकिन पता नहीं किसने, ये उपनिषद नहीं है, मतलब मनमानी। तो ये उपनिषदों के बाद ये समस्या शुरू हुई। छांदोग्य में फिर से प्रयास हुआ रिकनसाइल करने का, फिर श्री कृष्ण आए, गीता में उन्होंने रिकनसाइल की चेष्टा की, तंत्रों ने रिकनसाइल करने की चेष्टा की, और फाइनली श्री अरविंद ने कंप्लीटनेस मिलती है। तो मुझे कोई समस्या नहीं है जिनको शंकराचार्य को मानना है बुद्ध देव को एज अल्टीमेट, इट इज देयर प्रॉब्लम, बट टू मी इट डजंट गिव द अल्टीमेट आंसर। और जो कोई भी फिलॉसफी अगर आपको अल्टीमेट आंसर नहीं दे रही है, यहां जो मेरी समस्या है और उसके साथ रिकनसाइल नहीं कर रही है, तो वो इनकम्प्लीट है। सो इन माई व्यू दैट अद्वैता इज इनकम्प्लीट। हाँ प्लीज, बहुत संक्षेप में मैंने कहा है बहुत इस पर। हाँ हाँ बोलिए प्लीज।
नमस्कार। अरविंद जी ने, अरविंद जी पूर्व जन्म, जो हम जी रहे हैं और पुनर्जन्म, उसके बारे में।
ठीक है, ठीक। अगेन इस पर मैं आपको सॉरी इट मे लुक लाइक, बट क्योंकि उसमें विस्तार से ये सारे विषय हैं, और वहाँ पे इस पर कई टॉक्स हैं मेरी पुनर्जन्म के ऊपर, रीबर्थ के ऊपर, शेरविन ने तो लिखा ही है जगह जगह, बट टू मेक इट वेरी शॉर्ट, हाँ पुनर्जन्म है। अगर आप इंडिविजुअल सोल की बात करेंगे तो पुनर्जन्म बिकम्स ए स्पिरिचुअल नेसेसिटी, क्योंकि फिर वो इंडिविजुअल सोल कहाँ से आई और उसका अंत के बाद क्या होना है, तो रीबर्थ बिकम्स ए यू नो लॉजिकल नेसेसिटी इफ नथिंग एल्स। तो वो इस बात को बिल्कुल पुष्टि करते हैं, केवल वो मानते नहीं हैं, कई लोगों के केस में वो ही कुड से इवन, अब आई थिंक आपको ही माने जब ब्लेसिंग पैकेट हाउ मेनी, ये आपके साथ ही घटना हुई थी, अब देखिए अब पता चल रहा है हाउ मेनी, जब ब्लेसिंग पैकेट दे रहे थे चंपकलाल जी ने कहा मदर मोर ब्लेसिंग्स, तो मदर लाव्ड एंड सेड हाउ मेनी मोर, फिर उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, आप देखिए वो ब्लेसिंग्स का परिणाम, शी कुड सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कई ऐसी कहानियां हैं जहां दे कुड सी द पास्ट एंड द फ्यूचर, और उसमें मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक अलग भूमि है, डिवोटीज की भूमि है जहां हम जान सकते हैं, पर दे वेरी मच नॉट ओनली बिलीव, दे न्यू अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। पर सैद्धांतिक भूमि पर फ्यूचर क्या है, हम हमेशा बेटर एंड बेटर की ओर ले जा रहे हैं, और अगर हम स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ें तो यही सिद्धांत सामने आता है। मूल रूप से गीता भी यही कहती है, वो कहती है कुछ लोगों को आसुरिक बर्थ में, स्मॉल परसेंटेज, लेकिन वो भी कहती है वो जब रॉक बॉटम टच करते हैं तो रिकॉयल से वापस आते हैं और वो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनको संत का समझना चाहिए, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। बट रीबर्थ एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मूल इसका मंत्र ये है कि ये रिवार्ड पनिशमेंट की प्रोसेस नहीं है। भगवान सीईओ की तरह, इवन समझदार सीईओ आजकल कैरेट और स्टिक से काम नहीं चलाता है, वो तो आपको एवेन्यूज देता है क्रिएटिविटी के, और जो क्रिएटिव है उनको आगे बढ़ता जाता है, जो क्रिएटिव नहीं है वो अपना स्टक है, इससे बड़ा आपका पनिशमेंट क्या है। तो उसी प्रकार से रीबर्थ इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर द सोल, और वो सोल क्या है, डिवाइन का बीज है, बीज क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनने के लिए उसको नाना प्रकार के अनुभवों से, स्टेजेस से, स्टेप से गुजरना है, इसलिए वो एक लंबी यात्रा है जो एक देह के अंदर पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए बार बार देह बदलते हैं, हर बार सोल थोड़ी और डेवलप होती है, थोड़ी और डेवलप होती है, थोड़ी और डेवलप होती है, लेकिन मूल रूप से इसकी जर्नी सोल की दो स्टेजेस में होती है। जैसे एक बीज का फर्स्ट स्टेज है जब वो अंधकार में होता है, लेकिन वो अट्रैक्टेड होता है लाइट की तरफ, इसलिए वो अपने आप ऊपर की ओर जा रहा है, डिफाइंग ग्रेविटी, जड़ तो चली गई लेकिन वो ऊपर की ओर जा रहा है। ये होती है इग्नोरेंस में हमारी जर्नी, उसमें भी हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, इसलिए श्री अरविंद उसको कहते हैं सबकॉन्शियस योगा। हर व्यक्ति को प्यास तो पूर्णता की है, पूर्ण आनंद सब प्लस प्लस प्लस, प्यास उसी की है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। फिर एक टाइम आता है जब वो धरती के बाहर निकलता है, वो कहता है अरे प्रकाश तो वहां है, अब वो सीधा चलना शुरू हो जाता है। दैट इज द भूमि व्हेन सबकॉन्शियस योगा बिकम्स कॉन्शियस योगा, यही डिफरेंस है। और वो तब तक चलती रहती यात्रा जब तक हम उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते जिसका बीज हमारे अंदर सोल के रूप में विद्यमान है। पर्पस क्या है इसका? एक कृष्ण अनेकों कृष्ण बन जाएंगे, एको हम बहुश्याम, वन डिवाइन वांट्स टू बिकम मैनी 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 डिवाइन्स, तो अद्भुत होगा वो। तो तब समझ आता है ठीक है ये जो थोड़ी बहुत टुकाई चल रही है, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स ओके, बिकॉज यू नो दैट द एंड इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। वरना तो अजीब लगता है ये क्या पाप पुण्य में हमको समझ ही नहीं, क्यों क्या ज्ञान में कर बैठा एक बच्चे ने, उसके लिए 20 साल बाद मम्मी कहती तू 2 साल का था तूने मुझे धक्का दिया था आज मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, आपको क्या लगेगा कि कैसी माँ है ये? और भगवान को हम ऐसी तूने पाप किया था 2 जन्म पहले, अरे यार बता तो दो हमें क्या किया था हमने और हम मानते रहे इन चीजों को। भगवान दंड दे रहा है, कैसा भगवान होगा जो दंड देगा, उसके लिए तो दूसरा कोई नहीं है। तो ये सब मिसरीडिंग है, ह्यूमनाइजेशन किया है हमने एक डिवाइन प्रयोजन का। ये क्यों किया जाता है? इट इज टू फिल द फिलोसॉफिकल गैप्स इन अवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम संसार को कैसे समझाएं? एक और तो हमने कह दिया डिवाइन है जो फेयर है जस्ट है सब कुछ है, लेकिन जीवन ऐसा है तो कैसे समझाएंगे? तो ये एक हमने गैप को फिल किया ह्यूमन लॉजिक से। देखो जैसे हम लोग करेंगे पनिशमेंट देंगे रिवार्ड देंगे, तो भगवान भी ऐसे आपको दंडित कर रहा है और रिवार्ड दे रहा है। इट इज ए ह्यूमन मिसरीडिंग इनटू द डीप डिवाइन इंटेंशन विच इज ओनली फॉर प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। तो श्री अरविंद रीबर्थ की प्रोसेस को इवोल्यूशनरी प्रोसेस समझते हैं। आई थिंक इट आंसर्स फेयरली ऑन ए लार्जर स्केल। यस हाँ, द्वैत अद्वैत अलग है, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत ये कई धाराएं निकली, एक वेदांतिक स्कूल की धाराएं हैं। तो क्या कहती हैं अद्वैत? इसका एक एग्जाम्पल होता है वेव एंड द सी। तो वेव वेव भी है और सी भी है, तो ये अद्वैत की दो धाराएं हैं जिसको आप विशिष्ट अद्वैत कह सकते हैं। कई लोग इसको द्वैत द्वैत अद्वैत थोड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा है रिवर एंड द सी। तो रिवर आ रही है अलग है, अंत में सी में मिलती है एक है, तो वो द्वैत हो गया। जहां अलग है वो सृष्टि को समझाने का कि भाई दिस इज डिफरेंट दैट इज डिफरेंट, बट देयर इज अ वे दैट यू कैन मीट एंड बिकम वन थ्रू प्रेयर वर्शिप मेडिटेशन एटसेट्रा, आप एक हो सकते हो, पर मूल स्वरूप में दोनों। अब इसी में बहुत सारी अलग अलग विशिष्ट अद्वैत आता है जहां एक भी हो लेकिन अलग भी हो, जैसे मैंने बताया वेव्स की। फिर आप चले जाओगे कि पानी तो सेम है, पानी का मूल स्वरूप एक है, तो दे आर वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग, वही रिकनसाइल करने की चेष्टाएं हैं, बट अल्टीमेटली इट लीव्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनएंसर्ड कि राम तेरी गंगा मैली क्यों है? वो ठीक है मिल जाएगी पर मैली क्यों है? द्वैत अद्वैत की ये प्रॉब्लम है। एनीवेज दैट्स नॉट सो, हाँ बताइए।
I just go out of way. One thing is that I am a very senior professor. Past almost 50 years I am spending for my retirement. And I am very happy to state one thing. That one of the byproduct of my career is the present vice chancellor of this university. That's not an important thing. I have stand up only for one reason. Sir, we have got many, I will not say follower, but your beneficiaries. I have recently worked on this yoga sadhana in daily life, and I have come across so many things that I have drawn from you. Your website, your All India magazine is excellent magazine, and it provides a lot of things. In that case, I read some of the things you see. So my request now, only one, and that I've seen your last talk on this questions and answers on, based on volume number 29. I would like to request you to bring out something as summarizes of all those things that you said for why from 1st to 29. That will be very good, helpful to
us. आपका सुझाव सर आँखों पर और माता जी की प्रेरणा और समय, ये दो चीजों का बस मिलना जरूरी होता है, तो वो होगा तो निश्चित रूप से ही आएगी. प्रयास है, लेकिन मैं कभी आई डोंट रीविजिट व्हाट आई हैव स्पोकन और रिटन, पर आते हैं इस तरह के सुझाव, कोई टेकअप कर लेता है उस काम को, तो निश्चित रूप से यदि इसको होना है तो होगा. लेकिन बहुत सुंदर सुझाव है, आपकी शुभकामनाओं के लिए नमन. सब माता जी की ग्रेस है. हम लोग ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे और फिर मिलेंगे.